ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। छब्बीस ग्यारह मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता पाकिस्तान मूल के 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाए जाने पर कल शाम विमान से उतरते ही हवाई अड्डे पर मौजूद एनआईए टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और एनआईए के वरिष्ठ अधिकारियों की टीम लॉस एंजलिस से एक विशेष विमान से राणा को दिल्ली लेकर आई। उसे मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और देर रात पटियाला हाउस कोर्ट में एनआईए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया, जहां एनआईए ने तहव्वुर राणा की 20 दिन की हिरासत मांगी थी। राणा पर डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी और घोषित आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी के सदस्यों के साथ ही पाकिस्तान स्थित अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर 2008 में मुंबई में घातक आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश रचने का आरोप है। इन हमलों में कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे। पाकिस्तान ने कल कहा है कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य षड्यंत्रकारी तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित किया गया है, लेकिन उसने पिछले दो दशकों में से अपने पाकिस्तानी मूल के दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है और उसे कनाडाई नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, इसे दोबारा सुन लीजिए। और उसे कनाडाई नागरिक ही माना जाना चाहिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा कि तहव्वुर राणा के मुद्दे पर पाकिस्तान ने उसकी कनाडाई राष्ट्रीयता के बारे में अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। केंद्र सरकार ने तहव्वुर राणा मामले में अधिवक्ता नरेंद्र मान को विशेष सरकारी अधिवक्ता नियुक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि नरेंद्र मान को 3 वर्ष के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की ओर से मुकदमा चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 3,880 करोड़ रुपए से अधिक परिव्यय की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। परियोजनाओं में वाराणसी में आधारभूत ढांचे का विकास और सड़क संपर्क शामिल है। बाद में श्री मोदी मध्य प्रदेश की यात्रा करेंगे और ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आनंदपुर धाम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया भारत व्यापार मंच का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और विदेश मंत्री जुराज ब्लानेर भी उपस्थित थे। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि यह मंच तालमेल बनाने और व्यापार के अवसरों को आपसी साझेदारी में बदलने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पूरी शक्ति से ड्रग माफियाओं को खत्म कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में संबंधित एजेंसियों के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि नशा मुक्त भारत बनाने के लक्ष्य के साथ देश की एजेंसियां ने नशीली पदार्थों से जुड़े माफियाओं के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाए हैं। इस सिलसिले में असम में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 24,32,00,000 रूपये मूल्य के 30 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामाइन गोलियां जब्त की गई। श्री शाह ने कहा कि सरकार का ड्रग माफियाओं के खिलाफ अभियान दृढ़ता से जारी रहेगा। गृहमंत्री ने सफलता के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, असम पुलिस और सीआरपीएफ को बधाई दी। कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कल पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को हनुमान जयंती के अवसर पर 12 अप्रैल को कोलकाता में रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है। हालांकि न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने उत्तर कोलकाता के एक मार्ग से भगवान हनुमान मंदिर पर संपन्न होने वाली रैली के लिए कई शर्तें निर्धारित की है। एकल पीठ के निर्देशों के अनुसार कल शाम 5 बजे से 8 अप्रैल के बीच रैली आयोजित की जा सकती है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।